दर्शन की आवाज में प्रेष्ट मद्राधिपति परम धार्मिक यवनराज मिलिंद धर्म चक्र में दीक्षित हो गए थे। कुछ समय पश्चात उन्होंने राजप्रसाद और राज सिंहासन त्याग कर प्रवज्या ग्रहण कर ली। यवनराज ने अपने सहस्त्रों स्वकीय और राजकीय दास दासियों को दासता के बंधन से मुक्ति दे दी। दासों को स्वतंत्रता का दान देते समय महाराज ने उन्हें दक्षिणा स्वरूप उनके भरण पोषण के लिए यथेष्ट्रप भी दिया। कुछ दिन तक सागर नगरी के पथों वीथियों और पन्नियों में इन मुक्त दासों की उच्छृंखलता से विशेष अव्यवस्था रही। द्रव्य के संचय और उपयोग से अनाभ्यस्त दास अकस्मात पाए द्रव्य से अत्यधिक मदपान कर उन्मत्त हो विशेष तरह भक्त से वक्ष धारण करते और उपद्रव करते फिरते। इन्होंने दान में पाया द्रव्य समाप्त कर ऋण लिया। ऋण शोध में असमर्थ होकर पुनः वे द्विजवर्ग और संपन्न श्रेणी के हाथों दास रूप में बिक गए। अनेक दासों ने दासत्व और स्वतंत्र जीवन के संघर्ष को ही कठिन जानकर तथागत के धर्मचक्र में शरण ले काषाय चीवर और भिक्षा पात्र लेकर शांति प्राप्त। महाराज का सालिहोत्री दास पृष्ठ यवनराज के साथ ही यवन देश से आया था। विशेष चतुर विनीत और अश्वों की वंश वृद्धि और चिकित्सा में विशेष दक्ष होने के कारण वह महाराज का विशेष कृपा पात्र था। राजकीय दास होने से उसकी स्थिति अच्छी थी। महाराज ने संसार माया त्याग के समय पृष्ठ को दासत्व से मुक्ति के त्रिक कपीसा कम्बोज बाहलीक और सुगम देश के अनेक बहुमूल्य अश्व दान दिए। इन बहुमूल्य अश्वों को लेकर पृष्ठ ने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जाने वाले सारथों के साथ यात्राएं कर अश्वों का व्यापार किया। अनेक स्थानों के अश्व रथ दूसरे प्रदेशों में बेचकर व्यापार से सहस्त्रों स्वर्ण मुद्राएं उपार्जन कर पृष्ठ स्वयं सागर में समृद्ध श्रेष्ठियों की भांति निवास करने लगा और उसके कार्यवाहक उसका विस्तृत व्यापार चलाने लगे। एक दरिद्र परंतु रूपवती द्विजकन्या क्रय कर उसने विवाह कर दिया। अपने लिए अभिजात वर्ग के समान प्रसाद उद्यान बनवाए दास दासियां क्रय की और सामंत वर्ग के समान रहने लगा। महाराज मिलिंद ने पौरव राजवंश को पराजित कर मध्यदेश पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। अपने दीर्घ राज्यकाल में उन्होंने राज्य अधिकार पौरव वंश के अनेक कुलों और अन्य अभिजात द्विजकुलों को सामंतों के अधिकार और सम्मान देकर उन्हें शासन कार्य में अपना सहायक बना लिया था और अनेक यवन सेनापतियों के भी अग्रहार रूप ग्राम दान देकर अपना सामंत बना लिया था। महाराज मिलिंद के राज सिंहासन त्यागने पुत्राधिकारी के अभाव में मद्र के सम्मानित संपन्न और सशक्त कुलों ने किसी एक को अपना शासक स्वीकार न करके पूर्वी जम्बूद्वीप के गणराज्यों की भांति गणराज्य के रूप में मद्रदेश का शासन संभाला। यवन राज्य के वृद्ध अनुभवी नीतिज्ञ महासेनापति मिथोद्रस सैनिक शक्ति के सूत्रधार होने के कारण इस गण के गणपति और महासेनापति नियत हुए। महाराज के मंत्री महामति आचार्य देवमित्र गण परिषद के संवाहक बने। श्रेष्ठि प्रेष्ठ प्रचुर धन संचय और कर तथा साधारण धन से सम्मान पाकर भी कुलीन न होने के कारण गण परिषद की सदस्य न बन सका, परंतु अपने द्रव्य बल चातुर्य और विनय से गणपति मिथोद्रस का विशेष विश्वास पात्र बनकर अत्यंत प्रभावशाली हो गया। महासेनापति मिथोद्रस का एकमात्र युवा पुत्र कालकवलित हो गया। शोक विहल गणपति के लिए चतुर साहसी और विनीत प्रेष्ठ उसकी दक्षिण भुजा के समान था। पृष्ठ ने अपने पुत्र पृथुसून का पालन अभिजात वंश के कुमारों की भांति कर उसे अभिजात वंश के योग्य शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा भी दी। पृथुसेन की सौरवास्था समाप्त होने पर महापंडित धर्मष्ट देव शर्मा के पौत्र विनय शर्मा सामंत कार्टवीर के पुत्र सकृत महासाल समर्थक के पुत्र इंद्रदीप और मद्र की गण परिषद के संवाहक आचार्य प्रवर्धन के कनिष्ठ पुत्र व सुधीर के साथ विद्योपार्जन के लिए तक्षशिला भी गया। सबसे ही सम्मान पाने के कारण पृथुसेन में आत्मगौरव का भाव पिता से अधिक और विनय का चातुर्य कम था। उसकी प्रवृत्ति मार्ग रोकने वाली अर्गला के नीचे से सिर झुका कर निकल जाने की अपेक्षा अर्जन को गिरा देने की ओर थी। धन और प्रतिभा में अपने समवयस्कों से बढ़कर होने पर भी उसकी तुलना में सम्मान की न्यूनता उसके लिए असह्य हो जाती थी। मरगत के ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र द्वारा मौर्य कुल के अंतिम राजा बृहदत्त के वध और मगध की राज्य क्रांति के समाचार सुदूर मद्र में अतिरंजित होकर पहुंचे। मद्र के वर्णाश्रम धर्मावलंबी कुलों और जन में जनश्रुति थी कि देवताओं के अजय सेनापति कार्तिकेय ने जम्बूद्वीप को मौर्य वंशी शूद्र राजाओं के कलंक और नास्तिक मुंडी धर्म के अभिशाप से मुक्त करने के लिए ही सेनापति पुष्यमित्र के रूप में जन्म लिया है। अग्निमुख विप्रश्रेष्ठ ब्रह्मर्षि पतंजलि ने इसी देव कार्य के लिए सेनापति को राजसी यज्ञ के पुण्य से अभिषिक्त कर अजय कर दिया है। मद्र के महाराज धार्मिक मिलिंद की आज्ञा से यज्ञ में पशुबलि का विरोध हो जाने के कारण यज्ञों की महिमा और शक्ति छीन हो गई थी। मगध में वर्णाश्रम के पुनरुत्थान होने के उत्साह में मद्र में भी चिर उपेक्षित यज्ञ समारोह पुनः बलि सहित आरंभ हो गए। यजन याजन से विरक्त याज्ञिकों और पुरोहितों ने पुनः अपने वर्ण चिन्ह शिखासूत्र और तिलक धारण किए। सागल का वातावरण महायज्ञों के हविष यव तिल धान्य घृत और मंत्रपूत पशुओं के मंस के भस्म होने की गंध से भर गया। देवार्चन के उपकरण शंख घंटा घड़ियाल कांश्यताल और भेरी के नाद से वायु कंपित होने लगा। वर्णाश्रम धर्म के उत्थान की प्रतिक्रिया में धर्मराज मिलिंद की श्रद्धा से भिक्षा में पाए ग्रामों के अग्रहारों से और नगर प्रदेश के निर्वाण कामी उपासकों द्वारा घोषित तथागत के सहस्रों भिक्षुओं से पूर्ण विहार भी विक्षिप्त बधु छत्रों की भांति गुंजार उठे। चैत्यों में तथागत की प्रतिमा के सम्मुख घंटों का नारा अधिक काल तक और अधिक ऊंचे स्वर में होने लगा। हिंसा के पाप की ओर भटकते हुए नगर समाज के उद्बोधन के लिए सत्सा भिक्षु वीथियों के सूत्रपाठ द्वारा धर्म का संदेश देते फिरने लगे। चरे वेटी भिक्खवे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। श्रावण में सागल पर प्रवास के काले मेघ उबर आए। नगर के पथों और वीथियों पर भारी वर्षा से कीच और जल फैला जाता। नगर विवश स्थिरता से शिथिल हो जाता। वर्षा थमने पर चटकीले धाम से नगर के प्रस्तर निर्मित भवन और पत्थर टपने लगते। प्रसादों और साधारण भवनों के निवासी वाताशहीन ताप से व्याकुल और सामाजिकता के अभाव से उद्विग्न होकर उपवनों और उद्यानों में समाज का आयोजन करते। मेघों की सहसा उमड़ आने पर बौछारें उन्हें अपने भवनों का आश्रय लेने के लिए विवश करती थी। सागल के नगर समाज की मानसिक अवस्था भी वैसी ही थी। यज्ञ की शक्ति द्वारा वर्णाश्रम के पुनरुद्धार के लिए व्यग्र वर्णाश्रमी समाज और धर्मचक्र की नीति की प्रतिनिधिता से जनश्रांत और विरक्त हो रहा था। अभिजात समाज देवताओं कर्मफल के भय से उन्मुक्त मानिस जैसे लोगों की उस श्रृंखल लोकायत सिद्धांतों के प्रचार के कारण जन के अनाचार की आशंका से त्रस्त थे। मारिस के यज्ञवली का विरोध करने और संघ अष्टेवर के आदेशानुसार मूर्ति उत्कीर्ण न करने के अपराध में धर्माष्ठान से दंडित होने के कारण जन मौन रहकर भी क्षुब्ध था। धर्मावस्था में मधुपर्व के अवसर पर आर्य रुद्रधीर और पृथुसेन के विवाद का निर्णय परिणाम की आशंका के कारण स्थगित ही रहा। मद्र के गणराज्य की सेना में नवीन पदाधिकारियों की नियुक्ति की समस्या अनेक कुलों की परस्पर प्रतिद्वंदता के कारण परिषद में स्थगित रही। सबसे अधिक विक्षिप्त के कारण थे मद्र की उत्तर पूर्व सीमा से आने वाले दारवराज यवन केंद्रस के आक्रमण का समाचार। महाराज मिलिंद के दीर्घ राज्यकाल में और तदुपरांत कुल गणराज्य के समय में भी अभी शताब्दी से अधिक समय तक आक्रमण युद्ध के संकट से मुक्त मद्र राज्य की प्रजा और सागल का समाज युद्ध की अनुभूति भावना भूल चुके थे। उनकी कल्पना यज्ञों के अनुष्ठान के लिए बलि धन संग्रह चैत्यों की स्थापना भिन्न प्रदेशों से व्यापार द्वारा संबंधी कुलों के अग्रहार में बसी कृषक प्रजा से स्वामी भाग ग्रहण करने दूसरे प्रदेशों से सबल वृत्ति योग्य दासों और लोल अंगी दासियों को लाने और गण परिषद की सदस्यता के अधिकार और सम्मान के लिए अनेक कुलों की स्पर्धा से ही पूर्ण थी। प्रतापी यवनराज मिलिंद की शासन व्यवस्था कुल गणराज्य के हाथों में जाने पर मद्र की सैनिक व्यवस्था भी बदल गई। धार्मिक मिलिंद के समय मद्र का राज्य कोष बौद्ध विहारों की सेवा से रिक्त हो गया था। महाराज मिलिंद की विजय लिप्सा के समय ही सदा समृद्ध 20,000 सेना के पोषण के लिए उपाय न था। मिलिंद राज्य के आयुजीवी सैनिक महाराज के युद्ध से वैराग्य की नीति से उदासीन हो जाने के कारण दूसरे प्रदेशों की सेनाओं में चले गए थे अथवा अन्य व्यवसायों में लग गए थे। अनेक ने धनुष और खड़ग के स्थान पर कासाय चीवर और भिक्षा पात्र ग्रहण कर लिए थे। गण के कोष में द्रव्य का अभाव देखकर महासेनापति गणपति मिथोद्रस ने सेना के आयोजन कुलों को सौंप दिया था। मद्र के कुल गणराज्य के परिसर के प्रत्येक सामंत सदस्य को कुल गण की सेना के लिए 500 से 1,000 तक सैनिक और प्रत्येक साधारण सदस्य को 200 सैनिक प्रस्तुत करने का भार सौंपा गया था। कुलों के सम्मान और शक्ति के अनुकूल उन्हें सैनिक सेवा के मूल्य में गणराज्य के 5 ग्राम से लेकर 25 ग्राम तक के अग्रहार अर्पण किए गए थे। केंद्रस के आक्रमण के समय कुलों द्वारा आयोजित यह सेना केवल गण परिषदों के लेखकों के तार पत्रों और सदस्यों की कल्पना ही विद्यमान थी। अग्रहार के ग्रामों की प्रजा से प्राप्त बलिकर सैनिकों के पोषण के लिए नहीं सावंतों के विलास में व्यय हो रही थी। युवा पुत्र के शोक से जर्जर वित्त महासेनापति अहर्ट धर्मरक्षित के अनासक्ति उपदेश से सांत्वना प्राप्त करने का यत्न कर रहे थे, परंतु केंद्रस के आक्रमण से गणराज्य की रक्षा करने के कर्तव्य के विचार से उन्होंने परिसर के संवाहक आचार्य प्रवर्धन को मंत्रणा के लिए परिसर में निमंत्रित करने का आदेश दिया। परिसर के संवाहक आचार्य ने परिसर के गणपूरक सामंत कार्तवीर को आदेश दिया। अनेक दिन के विलंब से परिसर सम्मिलित हुई। महासेनापति ने चेतावनी दी, गण की सेना केवल सेना का परिहास मात्र है, आत्मरक्षा के लिए गण तुरंत उचित सेना संधान की व्यवस्था करे। आचार्य प्रवर्धन ने संग्राम यज्ञ के अनुष्ठान और सेना संधान के लिए धन की आवश्यकता बताकर गणकोष में विशेष बलि एकत्र करने के लिए राज्यबलि में वृद्धि की विज्ञप्ति कर दी। सागल का समाज वर्षाकाल के कर्दम से स्लट, पावस के धाम से कुभलाया हुआ, वाताशहीन उत्ताप से व्याकुल और केंद्रस के रस्यू दलों के प्रतिदिन समीप आने जाने के समाचारों से संतुष्ट और चिंतित हो रहा था। पथ वीथियां और पन्न्य विरूप और स्वभावहीन हो चुके थे। आक्रमण का त्रास युद्ध के लिए बलात्कार उगाहते फिरते राजपुरुषों के आतंक से और अधिक असह्य हो रहा था। जन समाज के हृदय में युद्ध में विजय पाने का उत्साह नहीं, उस भय से त्रास पाने की विभीषिका फैल रही थी। सब और त्रास में प्रतीक्षा थी, केंद्रस के आप पहुंचने पर क्या होगा। कुल गणराज्य में कुलीन वंशों के आतंक और युद्ध के लिए बढ़ती राजस्व बलि और सामंतों के सैनिकों द्वारा नागरिकों शिल्पियों और कृषकों की सैन्य सेवा के बदले के लिए बलात् धर लिए जाने से मुक्ति मिलेगी या केंद्रस के सैन्य दल द्वारा और अधिक हत्या और अपहरण होगा। केंद्रस के निरंकुश रौद्र प्रताप और उसकी करुण प्रजावत्सलता की अनेक कल्पित अतिरंजित कथाएं अपानकों और पांडियों में फैली हुई थी। सब और दैव के सम्मुख असमर्थ का भाव था। श्रेष्ठी सातवा और व्यापारी आशंका से अपना द्रव्य समीपवर्ती मालव कथ आदि गणों के प्रदेश और सूरसेन तथा मगध की ओर भेज रहे थे। सामंत सर्वार्थ कार्तवीर और आचार्य प्रवर्धन के प्रसादों में अनेक प्रहर रात्रि बीत जाने पर मंत्रणा होती थी। आचार्य प्रवर्धन अनेक गुप्त संदेश सूरसेन और मगध भेज चुके थे। वे आशा कर रहे थे कि वर्णाश्रम का पुनरुद्धारक ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र केंद्र से मद्र की रक्षा के लिए सेना भेजकर मदन में मगर की भांति मुंडी धर्म का नाश कर वर्णाश्रम की स्थापना करने से ना चुकेगा। वे इस प्रयोजन की विज्ञप्ति परिषद में उपस्थित करना चाहते थे, परंतु यवन सामंतों तथागत के धर्मचक्र के प्रति अनुरक्त गणपति सामंत इंद्रसेन और धर्मस्थ देव शर्मा के विरोध के विचार से ऐसा न कर सके। सामंत सर्वार्थ और कार्तवीर इस समय सेना संधान कर केंद्र से आत्मरक्षा के साथ ही पौरव वंश के उत्तराधिकारियों को राज सिंहासन पर बैठा कर पुनः पौरव वंश का राज्य स्थापित करना चाहते थे। गण के महासाल श्रेष्ठी और व्यापारी गण के सेना संयोजन के लिए अन्न वस्त्र रथ अश्व और अन्य सामग्री मनचाहे मूल्य पर प्रस्तुत करके दोनों हाथों से द्रव्य संचय कर उसे तक्षशिला पुष्पपुर और मथुरापुरी के अंतरायन पन्नियों में भेज रहे थे। सागल नगरी के अनेक पीढ़ियों के पौध से भरे समाज में महापंडित महाविद्ध धर्मष्ट देव शर्म वयोवृद्ध गणपति मिठोद्र वृद्ध पृष्ठ जैसे कुछ ही व्यक्ति थे जिनकी स्मृति में युद्ध के अनुभव से शेष थे। गणपति की स्मृति में आक्रमणकारी विजेता के रूप में और महापंडित देव शर्मा की स्मृति में पराभूत विजित के रूप में वह स्मृति थी। केंद्रस के सागल की ओर बढ़ते जाने के समाचार से धर्मष्ट की स्मृति में नेत्रों के सम्मुख अग्नि के विवाद से प्रशस्त अट्टालिकाओं का अंगारों का रूप धारण कर गिरना, नगर पर छाए धुएं के मेघों से श्वासावरोध पथों और वीथियों में रक्त की धाराएं और कीचड़, स्त्रियों का आर्तनाद, पराजित अभिजात समाज का बंदी के रूप में अपमान प्रत्यक्ष होने लगता। पुत्र शोक से विहल अनासक्ति की साधना में आत्मविस्मित गणपति का अनेक बार उद्बोधन करवे गण की रक्षार्थ विचार के लिए परिसर का निमंत्रण कराते, परंतु परिसर का समय अप्रासंगिक वाद विवादों में समाप्त हो जाता। महाश्रेष्ठी पृष्ठ ने भी परिस्थिति की उपेक्षा न की। पृष्ठ ने गण के सैन्य आयोजन कार्य में सैकड़ों अश्व रथ समीपवर्ती देशों से मंगवाकर बेचिए और सहस्त्रों स्वर्ण मुद्रा लाभ उठाया। महापंडित धर्मष्ट और गणपति की युद्ध विषय चिंता जानकर पृष्ठ ने स्वेच्छा से एक सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा कोष में बलि अर्पण कर दोनों का ही आदर और विश्वास प्राप्त किया और अत्यंत गुप्त मंत्रणाओं में योग्य देने का अधिकारी बन गया। पृष्ठ ने सेना का नियंत्रण विशेष जाने परखे सेनानियों और नवीन विश्वास पात्र बलाधिकृत के हाथ में रखने का परामर्श दिया। सेना संधान के विषय में विशेष परामर्श देने के लिए पुनः परिषद सम्मिलित हुई, परंतु आचार्य प्रवर्धन की कूटनीति के कारण सेनापतियों के पद परिवर्तन और निर्वाचन का कार्य ठीक से न हो पाया। सामंत कार्तवीर के आग्रह से आर्य इंद्रदीप और आर्य विष्णेव अश्वसेना के और आर्य विनय शर्मा रथ सेना के नवीन बलाधिकृत नियत हो गए। गण परिषद के सम्मुख गण की सेना में पद के लिए और धर्मास्थान के न्याय के लिए पृथुसेन का आवेदन उपेक्षित और स्थगित ही रहा। उसे जन और समाज में सब और अव्यवस्था शैथिल्य और आशंका और संदेह दिखाई देता। स्वयं वह निराश और आशंकित था। पृथुसेन को पिता उत्साहित कर सांत्वना देते, पुत्र अवसर शीघ्र गति से चला आ रहा है, उसे पकड़ने के लिए सतर्क और सन्नद्ध रहो। जानते हो यवन देश के विद्वानों की उक्ति है, अवसर के देवता का मुख सन्मुख लटके केशों में छिपा रहता है, उसे पहचानना कठिन होता है, परंतु उसे वश किया जा सकता है तो केवल अग्र केशों से पकड़कर। अवसर के सिर का पिछला भाग केशहीन है, सामने से निकल जाने पर उसे सभी पहचान लेते हैं, परंतु गंजे सिर पर हाथ मारने से कुछ नहीं पड़ता, इसलिए अवसर को पहचानने में सतर्कता और तत्परता आवश्यक है। पुत्र यदि तुम में साहस शौर्य और प्रतिभा है, तुम्हारे हाथ में धन है, तो इसी संकट के समय तुम्हारा मूल्य आंका जाएगा। पुत्र साहस करो, समर्थ लोगों का विश्वास पात्र करो, वृद्ध धर्मष्ट और गणपति की सेवा में जाओ, सामंत उत्कृष्ट और सामंत इंद्रसेन से आत्मीयता स्थापित करो। पिता के आदेश से भी विश्वास और कृपा की भिक्षा मांगने जाना पृथुसेन के लिए सही न था, उसे उत्साह न हुआ। अभिजात समाज में उसे अपने प्रति सब और उपेक्षा का मौन और कायरतापूर्ण तिरस्कार दिखाई देता। कहीं भी जाना उसे अच्छा न लगता, समाज अपानक क्षमा कहीं उसे उत्साह न होता, पान और नृत्य में उसे रुचि न रही। समय बोझ जान पड़ने पर वह अपने प्रसाद के उद्यान में वृक्षों के नीचे बैठकर वायु से हिलते पत्तों को लक्ष्य बनाकर वन से भेटता रहता, अथवा अपने परिपार्श्व दास श्वंग से चतुरंग का खेल खेलता रहता। पृथुसेन संध्या समय यदि कभी मल्लिका अथवा वसुमित्रा के यहाँ जाता भी तो केवल दिव्या से मिलने की आशा में, उसके दुख से दुखी दिव्या के सामीप्य से उसे सांत्वना मिलती। जीवन का उसे एक ही मार्ग दिखाई देता, संसार में उसे मनुष्य जानकर जिसने अपनाया, अनेक बाधाओं की भी उपेक्षा कर अपना हृदय अर्पित किया, वही दिव्या उसका एकमात्र अवलंब थी, अपनी थी। उस दिव्या को लेकर वह किसी अज्ञात दिशा और देश में जाकर अपने लिए नया स्थान, नया समाज, नया संसार बसा ली। ऐसे देश में जहाँ वह अपने जन्म के लिए दंडित ना हो, जहाँ वह अज्ञात कर्मों के फल से विवश ना हो, जहाँ उसे कर्म करने का स्वतंत्र अवसर हो, जहाँ उसका पुरुषार्थ और प्रतिभा अकुलीन पिता की संतान होने के कारण व्यर्थ ना हो जाए। सागल में समाचार पहुंचा कि मद्र की सीमा के सेना केंद्र से पराजित हो गई है। नगर में युद्ध का त्रास फैल गया। किसी भी स्थान और समय कहने वाली एक मुख और सुनने वाली दो कानों का संयोग हो जाने पर युद्ध का प्रसंग आरंभ हो जाता। देवी मल्लिका ने भी संग्राम यज्ञ में धन की बलि देकर सहयोग दिया था। उसके चतुस्साल में भी संगीत और नृत्य के मध्य में सैनिक कार्य और शासन से संबंध रखने वाले राजपुरुषों में युद्ध का प्रसंग आरंभ हो जाता। वक्ता और श्रोता हाथ में चषक लिए ललित कला का लास्य भूलकर युद्ध की विभीषिका के विवेचन से आत्मविस्मित हो जाते। जीवन के आनंद से जीवन की रक्षा की चिंता अधिक प्रबल हो जाती। सुरा का प्रभाव बढ़ने पर वे रचना प्राय प्रलाप का रूप ले लेती। पृथुसेन सुनता और प्रलाप करने वालों की मूर्खता और कायरता से उद्विग्न हो मौन रह जाता। इंद्रदीप पर्याप्त सुरा पीकर वक्षस्थल फुलाकर कह रहा था, युद्ध द्विजों के भुजाबल से जीता जाता है, उसके लिए हृदय में तेज और सामर्थ्य की आवश्यकता है, जैसे सेनापति पुष्यमित्र। हमारे वृद्ध सेनापति विचारों की विश्रृंखलता से जिनका सिर हिलता रहता है, वह क्या युद्ध करेंगे? इस साधारण जयों पराजयों से क्या होता है? इन धमनियों में पौरव वंश का रक्त है, जिनके शौर्य के भय से यवनराज मिलिंद विजयी होकर भी राज्य न कर सके। प्रबज्ञा ग्रहण कर भिक्षा पात्र की शरण ली। अभी जिस दिन महाबलाधिकृत इंद्रदीप सैन्य संचालन करेंगे, उस दिन देखना केंद्रस की क्या अवस्था होगी। वह अट्टहास कर उठा। बद्य का आधार लिए सम्मुख खड़ी दासी का बाहु पकड़ के इंद्रदीप ने उसे अंक में खींच लिया और बोला, उस दिन केंद्रस की पत्नी शामंत इंद्रदीप के अंक में उसी प्रकार शोभित होगी। हा हा। दासी मग्गा इंद्रदीप के उन्मत्त व्यवहार से भयभीत हो सिहर उठी। मल्लिका ने उंगली होठों पर इंद्रदीप को संकेत किया, न आए, दासी को ट्रस्ट न करे। इंद्रदीप की समीप बैठा श्रमंत श्रीमुख शर्मा का पुत्र केदार शर्मा मल्लिका की वर्जना से खिन्न होकर बोला, इसी परवशता के लिए हम केंद्रस के खड़ग के आघात अपने शरीर पर सहेंगे? दोनों हाथ फैलाकर समर्थन के विश्वास में उसने सब लोगों की ओर देखा। हाँ कहो, एक दासी के सम्मुख भी सामंत कुमार विवश है? वह दासी से भी स्वच्छ व्यवहार नहीं कर सकता? हमें दासी की स्वीकृति का भी दास होना पड़े? दृष्ट जन सागल के पठों और मीठियों पर दुर्वर्ण से स्पर्धा और अवज्ञा करेंगे? तुंतवय और कम्बकार हमारे समान आसनों पर बैठे, मद्रगण के ऐसे शासन में हमारा क्या आया है? उसी के लिए हम अपना रक्त बहाएंगे, क्यों सृष्टि उदय भानु? केदार शर्मा ने उपधान का आश्रय लिए शिथिल उदय भानु को समर्थन के लिए ललकारा। अलस उपेक्षा से उदय भानु ने उत्तर दिया, मेरे लिए सब समान है। जिस प्रकार मद्रगण राजस्व के रूप में मेरे व्यापार का श्रेष्ठांश लेता है, उसी प्रकार केंद्रस मेरा शोषण करेगा। गण ने मुझसे 100 स्वर्ण मुद्रा संग्राम यज्ञवली में लिया है, क्या गण मेरी रक्षा 100 गुना अधिक करेगा? क्या मेरा शरीर दूसरे नागरिकों से 100 गुना अधिक बड़ा है? अपने स्थूल उदर पर हाथ फेरते हुए उदय भानु ने पूछा, भाई मैं किसी को कुपित क्यों करूं? मेरे लिए सब समान है। मैं तो दीन वैश्य हूँ, राज सिंहासन अधिकारी जो हो युद्ध करे, वैश्य तो दीन सेवक है। इंद्रदीप ने मल्लिका को संबोधित किया, देवी तुम जानती हो तुम्हारी कला की क्षमता की शपथ, देवी सरस्वती की शपथ। मुंडियों ने मंत्र को भीतर से रखा कर उसी प्रकार खोखला कर दिया है, जैसे दीमक कष्ट स्तूप को खा लेता है। राज्य का तृतीयांश निष्क्रिय मुंडियों से भरे विवाहों की सेवा में व्यय हो जाने से शेष क्या रहेगा? मद्र केंद्रस का प्रतिशोध शस्त्रहारी सैनिकों से नहीं, चीवर और भिक्षा पात्र भिक्षुओं से करेगा। तथागत के मृगशावक मद्र की रक्षा करेंगे, आखेत के श्वान को भूखा रह मृगशावकों को पालने का परिणाम यही होता है। केंद्रस के खड़ग का प्रहार सहने के लिए अहर धर्मरक्षित को भेजो, अष्टवीर चिमुक को भेजो। वह ठास कर उठा। मल्लिका हास्य में योग न दे सकी। इंद्रदीप को संबोधन कर उसने उत्तर दिया, आर्य, क्या पारस्परिक प्रतिद्वंदता का परिणाम शत्रु के हाथ आत्मसमर्पण होगा? जब मद्र और सागल नहीं रहेंगे, किसका उपालंब कौन सुनेगा? पृथ्वीसेन के लिए अधिक सहना संभव न रहा। दिव्या को चतुस्साल से उठाने का संकेत कर वह कृत निभृत ताल की ओर चला गया। कुछ ही क्षण में दिव्या संकेत का अनुवर्तन कर उसके पीछे चली गई। दिव्या का हाथ अपने हाथ में लेकर पृथ्वीसेन ने क्षोभ से कहा, प्रिय देख लिया तुमने, यह है युद्ध के लिए आयोजन। दुर्दांत केंद्रस मद्र की ग्रीवा पर अपना निर्मम प्राण रखे है और मद्र के नायकों में यह षड्यंत्र चल रहा है। दिव्या ने अधीर होकर उत्तरीय से नेत्र ढक लिए, उसके पीठ बाहु में लेकर पृथ्वीसेन बोला, इन लोगों की दृष्टि में यह आक्रमण केवल मुंडी धर्म के पाप का फल है। आचार्य प्रवर्धन संग्राम यज्ञ की ओट में वर्णाश्रम धर्म की स्थापना का षड्यंत्र चला रहे। कोई नहीं सोचता, पुष्यमित्र हो या केंद्रस, मंत्र में वर्णाश्रम धर्म की स्थापना के लिए कोई अपना रक्त बहाने नहीं आएगा। उन्हें प्रयोजन है अपने साम्राज्य विस्तार से, मंत्र की भूमि के धन द्रव्य से। इनका विचार है केंद्रस मंत्र विजय कर इनके ब्राह्मणत्व के जन्मजात अधिकार से इन्हें पूज्यनीय मानकर इनकी पूजा करेगा। पराजित होने वाले कभी पूज्य नहीं होते। केंद्र स्वयं अपने आप को देवता समझता है, उसकी अपनी सृष्टि के लिए ही यह यज्ञ है। संपूर्ण सागल यज्ञ कुंड होगा, उनमें इन भूदेवों और सामंतों के शरीर और उनकी संपत्ति यज्ञ की बलि बनेंगे। बचेंगे केवल वे लोग जो अपना मनुष्यत्व खोकर केंद्रस की पादत्राण की ठोकर को सम्मान समझेंगे। क्या यह बचना है? इसके अंतःपुरों को चैन से भूमि का स्पर्श न करने वाला कुल नारी समूह केंद्रस के विजयोन्मुक्त भूखे कामुक सैनिकों के लिए द्राक्षा के गुच्छों की भांति मोहक होगा। अभिजात और कुलीन होने का अभिमान करने वाले लोग दासों की भांति श्रृंखलाबद्ध फिरेंगे। विजय की लूट में सागल की कुल नारी और द्विज कुमारियां भय से चित्कार करती समेटी जाएंगी। सर्वनाश की उसग्नि में हमारा जीवन की सब आशा समाप्त हो जाएगी। अपने विचारों की विहिष्का में आत्मविस्मृत पृथ्वीसेन की दृष्टि जलकुंड में से दोलायमान तारों के प्रतिबिंब की ओर लगी हुई थी। दिव्या का हाथ उसके हाथों से छूट कर कटिबंध में लगी कटार उसके हाथों में जा पहुंची। उसके मुख पर लगी दिव्या की दृष्टि का ध्यान उसे न रहा। आत्मसात वह कहने लगा, मैं अब कल्पना करता हूँ हमारे प्रज्वलित प्रसादों की ज्वालाओं के प्रकाश में विजय और मद से मत दारू सैनिक तुम्हारे शरीर पर हाथ डालेंगे, मैं मिथिला में बंधा खड़े होऊंगा। उससे पूर्व या तो मैं शत्रु के खंग से जीवन मुक्त हो चुका होऊंगा या स्वयं अपनी कतार से, परंतु अपनी मृत्यु के पश्चात भी तुम्हारे लिए उस दारुण विहिष्का की कल्पना अवश्य है। दिव्या के सकने के शब्द से विचार टंडरा से जाग पृथुसेन ने उसे कति से अपने बाहुपास से समेट कर आलिंगन में हृदय पर ले लिया। दिव्या के मस्तक कपोल और मुख के अनेक चुंबन लेकर अपने मुख के सम्मुख उसका मुख हाथों में थाम कर पृथुसेन ने सांत्वना दी, दिव्यो भय और त्रास से क्या लाभ, जीवन के वो क्षण पूर्णता से जीकर साहस से जीवन समाप्त कर ले। दिव्या को सांत्वना देने के लिए वह स्वयं दिव्या के शरीर की सजीवता में आश्रय ढूंढने लगा। शिथिल दिव्या के मेरुदंड और कति को उसने अपने गूढ़ आलिंगन में और अधिक समेट लिया। दिव्या के कंचुक में बंधे उड़ोस उसके हृदय की धड़कन को आश्रय देने के लिए बढ़ रहे आए थे। उसकी थोड़ी दिव्या के केशों से आश्रय पाए थे। पृथुसेन का मस्तिष्क दिव्या के केशों की गंध की मधुर मूर्छा में विस्मित हो रहा था। युद्ध की भीषण रुद्र कल्पना का अग्नि विभ्रात तेलहीन दीपशिखा की भांति छीन होकर दूर सुदूर हटता जा रहा था। परम कमनीय सृष्टि के लिए व्यग्र पृथुसेन के प्राण ओठों पर आकर दिव्या के प्राणों के लिए विकल हो उठे। दिव्या के ओठों का पाकर वे उनसे पृथक होना ना चाहते थे। उनके आवेश उसके अवश हाथ दिव्या के रोजों के नीचे स्पंदित प्राणों की खोज में उसके कंचुक पर चंचल हो उठे। दिव्या सिहर कर सिमट गई। आत्मसमर्पण की तुष्टि और आत्मरक्षा की प्रवृत्ति की दुविधा में उसके हाथों ने पृथुसेन के हाथों को थाम लिया। पृथुसेन ने दीर्घ निश्वास से संयत होकर उसके ओठ दांत से दबा लिए। क्षण भर के लिए उसकी दृष्टि से लुप्त युद्ध की विभीषिका फिर उसके सामने आ गई। शिथिल हाथ दिव्या के कंधे और कटी पर रख दृष्टि जलकुंड में डोलायमान तारों के प्रतिबिंब पर लगाए। उत्तेजना और व्यर्थता से मुख में भर आई कटुता को निगल कर वह फिर बोला, दिव्यो मैं मृत्यु से भय नहीं मानता। मृत्यु क्या है? अस्तित्व का अंत, जिसका अस्तित्व नहीं, जिसे अनुभूति नहीं, वह भय भी अनुभव नहीं कर सकता। भय है जीवित रहकर पीड़ा और पराभव सहने में, भय है जीवन भर की पीड़ा और पराभव से तुम्हें अंक में लेकर समाप्त हो जाने से कौन इच्छा अपूर्ण रह जाएगी। फिर उसमें भय क्या, वह सुखद अस्तित्व का सुखद अंत है। परंतु मैं युद्ध में पराकांत होकर पराभूत होकर जीवन भर तिल तिल कर मरने की कल्पना सहन नहीं कर सकता। जीवन की सार्थकता अधिकार और समर्थ में ही है। इन लोगों के लिए युद्ध षड्यंत्र की अभिसंधि पूर्ण करने का अवसर मात्र है। वे परस्पर एक दूसरे को शत्रु समझते हैं, परंतु जो वास्तव में इन सब का शत्रु है उससे सभी मित्रता और सहायता की कल्पना कर रहे हैं। पुत्र शोक में संसार से विरक्त महासेनापति के सम्मुख महाराज मिलिंद का आदर्श है। वे पहरों और अर्हत अहर्ट धर्मरक्षित के निर्माण मार्ग के सुख की कल्पना सुनकर शांति पाते हैं। आचार्य संवाहक अपने पूर्वजों की भांति केंद्रस के मंत्री पद की आशा में मंदिर को भस्मीभूत देखने के लिए तैयार है। नगर और गण की संपूर्ण प्रजा का जीवन इन लोगों के स्वार्थभूत कुचक्रों पर निर्भर है और इनके लिए स्वार्थ लाखों जनों के प्राणों से अधिक प्रिय है। पृथुसेन जलकुंड के तारा बिंबित अस्तर की ओर दृष्टि लगाए रहा। पृथुसेन का हाथ अपने चिबुक पर रख दिव्या ने अनुरोध किया, प्रिय टाट के समीप जाओ, वे भी तुम्हारी ही भांति युद्ध के परिणाम की विहिष्का से चिंतित है। उन्होंने मिलिंद द्वारा मंत्र का ध्वंस अपनी आंखों से देखा था। उनकी प्रतिज्ञा है उस नारकीय दृश्य को पुनः देखने के लिए उनका शरीर शेष न रहेगा। टाट बहुत कुछ करने में समर्थ होंगे, महासेनापति उनकी अवज्ञा न कर सकेंगे, आचार्य भी न कर सकेंगे। अंधकार में दिव्या के नेत्रों में दृष्टि गड़ाकर पृथुसेन बोला, प्रिय अब भी यदि अवसर मिले तो मैं बड़बस केंद्रस का अवरोध कर सकता हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि, परंतु अवसर न होने से क्या कर सकता हूँ। दिव्या ने पृथुसेन का हाथ अपने हाथों में लेकर पुनः आग्रह किया, प्रिय तुम टाट के समीप अवश्य जाओ, एक बार जाकर देखो, मैं स्वयं उनसे निवेदन करूंगी। विलंब हो रहा है प्रिय, कंचुकी प्रतीक्षा कर रहा है, चलूंगी। पृथुसेन मल्लिका के प्रसाद के सिंह द्वार पर प्रतीक्षा में खड़े अपने अस्त्र रक्षक की उपेक्षा कर पैदल ही चला। राजपथ छोड़कर वह तंतु वियों की वीथी से चला जा रहा था। वीथी प्रायः निर्जन और जहां तहां साधारण स्थिति के भवनों से पड़ने वाले प्रकाश के अतिरिक्त अंधियारी थी। शिला मंदिर पथ पर उसके पीछे आते घोड़े के शबल शुभों की आहट से वीथी प्रतिध्वनित हो रही थी। पृथुसेन विचारमग्न चला जा रहा था। पृथुसेन संकीर्ण वीथी से निकलकर लोहकारों की अपेक्षाकृत विस्तृत मार्ग पर आया। रात्रि के पहले प्रहर पन्ने उठकर मार्ग प्राय निर्जन हो चुका था। केवल कुछ पन्नियों पर छीन प्रकाश था, जहां से सस्ते मध्य की तीखी गंध आ रही थी। कहीं कहीं आग पर मांस और दूसरे खाद्य पदार्थ भूंगने जा रहे थे। एक स्थान पर प्रकाश अधिक था और जनरम कोलाहल सुनाई दे रहा था। घोड़ों के सुमो की आहट पाकर एकत्र समुदाय ने पृथुसेन की ओर ध्यान दिया। उसका वेग देखकर कोलाहल संभ्रम से रुक गया। समुदाय का ध्यान अपनी ओर आकर्षित होने से पृथुसेन की विचार टंडरा टूटी। उसे जान पड़ा उस कोलाहल में युद्ध का ही प्रसंग चल रहा है। कुछ आगे बढ़कर पृथुसेन ने अपना बहुमूल्य उष्णीव उतारकर अश्वरक्षक को सौंपकर उसे अश्व सहित प्रसाद लौट जाने का आदेश दिया। उत्तरी से शरीर ढककर वह अकेला चला। शब अब ध्यान से देखने पर उसकी ग्रीवा पर कंचुट केशों के बीच से दिखाई देने वाले कानों के बहुमूल्य कुंडल ही उसकी अभिजात व्यक्ति होने का परिचय देते थे। लौहकारों के पन्ने के आगे वेश्याओं का चतुर्मार्ग था। भवनों के ऊपर खंडों के आलिंदों के नीचे मार्ग में एकत्र समुदाय पर प्रकाश पड़ रहा था। अनेक बालक बालिकाएं ऊंचे स्वर में पुकार पुकार कर प्रेमियों के योग्य, कामी पुरुषों के योग्य सुगंधित पुष्पमालाएं बेच रहे थे। एक बालक ऊंचे तीखे स्वर में भुने कोमल मांस का स्वाद चखने का निमंत्रण दे रहा था। मद्य के पन्ने के सम्मुख खड़ी एक वृद्धा एक मद्यप के अंगरखे में का छोर थामे मूल्य के लिए विवाद कर रही थी। उन्हें चारों ओर घेर कर लोग एक दूसरे लोग हंस रहे थे। वृद्धा ऊंचे खिन्न स्वर से चिल्ला रही थी, नहीं नहीं, इस मूल्य पाए बिना मैं तुम्हें पन्ने से ना जाने दूंगी। तुम सैनिक बन गए हो तो मुझे इससे क्या, कल तुम डरवे चले जाओगे तो मैं मूल्य किससे पाऊंगी। क्या मद्य बिना मूल्य के बनता है? वाह जी, तुम बड़े छलिया हो। मूल्य साथ लिए बिना मद्य पीने आते हो? सैनिक बनकर तुम युद्ध में जा रहे हो तो मुझे क्या, तुम जिस सामंत के सैनिक बने हो जिसकी रक्षा करोगे उसी से मद्य भी लो। मुझ दीन बुढ़िया को क्यों छलते हो? दो स्वर्ण मुद्रा तो राजपुरुष मुझसे संग्राम यज्ञ की विशेष बलि ले चुके और तुम मद्य पीकर मूल्य नहीं देना चाहते। कोई बुढ़िया की बात काट कर बोला, संग्राम यज्ञ की विशेष बलि एकत्र करने से राजपुरुषों का धन खूब बढ़ेगा। बुढ़िया, तेरे दो स्वर्ण मुद्रा से एक गर्कोष में जाएगा और एक राजपुरुषों के घर में, केनरस हमें क्या लूटेगा, उससे पूर्व मद्य के राजपुरुष ही हमें लूट लेंगे। अरे बुढ़िया, बलात् बलि लेने वाले राजपुरुषों को तू बिना मूल्य मद्य पिलाकर अनुग्रहित होती है और अपने समान दीन ग्राहकों से जल मिले घूंट घूंट मद्य का दूना मूल्य मांगती है। बोलने वाले की पीठ पर हाथ मारकर उसके समीप बैठा मद्यप उन्माद से हंसता हुआ बोला, मित्र यही तो अनोखी चाल है, कुत्ता कुत्ते को काटता है और मालिक से के अन्न की रक्षा करता है। वैसे ही हम तुम राजपुरुषों की प्रसन्नता के लिए एक दूसरे का हनन करते हैं। मित्र, तुम्हारी कटी में भी राजपुरुष की मुद्रा का पत्ता बढ़ जाए तो जानते हो क्या होगा, तुम ड्योढ़ी पर बढ़े कुकुर की भांति पथ पर चलने वाले कुकुरों पर गुड़ाओगे। देखो, स्वयं खाने से उतना पुण्य नहीं जितना ब्राह्मण को खिलाने से है, जानते हो क्यों, ब्राह्मण देवता का कुकुर। अंधकार में एक और खड़े पृथुसेन ने बोलने वाले का स्वर विस्मय से पहचाना, मूर्तिकार दार्शनिक आर्य मारिस। मारिस के केस और वस्त्र इतने अव्यवस्थित थे उसे पहचानना कठिन था। पृथुसेन सोच रहा था कि अपदस्त और संपत्तिहीन हो जाने से मारिस की क्या अवस्था हो गई। उसी समय मूल्य देने में असमर्थ ग्राहक का अंगरखा खींचकर बुढ़िया ने पुनः झुंझलाने से पृथुसेन का ध्यान पुनः उसूर गया। कोई बुढ़िया से कह रहा था, कृपने, दीन नागरिक के प्रति इतने निष्ठुर ना हो, सैनिक सेवा के लिए सामंत के सैनिकों द्वारा बलात् धर लिए जाने पर यदि दुख में उसने दो चषक मद्य पी ही लिया तो क्या हुआ। एक अन्य वृद्ध मद्यप एक हाथ में मिट्टी का दान पान पात्र दूसरे में खाद्य लिए अपने स्थान से उठकर बोला, सखा सांदे, तेरे पान का मूल्य मैं दूंगा, तू पी और पी। उसने सात्र सांदे का मुख से लगा लिया। रिक्त पात्र पट पर पटक हुआ बोला, क्या उपयोग है इस धन का, जो खा लिया जो पी लिया वही मेरा है। मैं दिन भर उग्र ताप में बैठकर तलवारें गढ़ता हूँ, वही तलवार हाथ में लेकर राजपुरुष मेरे पुत्र को बलात् सैन्य दल में हाँक ले गए। मेरा पुत्र केन्द्रस के खड़ग का प्रहार सहने डार बजाएगा और वाचक पुरोहित मेरे लिए राजबलि के द्रव्य से मंत्रपूर्ण सुरापान कर बलि के मांस का भोजन कर मंत्र पाठ द्वारा रक्षक देवता का आह्वान करेगा। महायोद्धा सामंत गौड़ और कृष्णवर्ण दासियों को अंक में लेकर सैयारूढ़ होने का पराक्रम करेगा और खड़ग के आघात से कांपता हुआ मेरा पुत्र कायर कहलाएगा। हाय, इससे भी तो श्रमण बनकर दीर्घजीवी होता तो अच्छा था। मध्यम दोनों हाथों से सिर थाम कर भूमि पर बैठ गया। शांदे बुढ़िया के हाथ पर अपने अंगरखे का छोड़ छुड़ा कर वृद्ध के समीप बैठकर उसे सांत्वना देने लगा। तात, रोने से क्या, देव बलि है, देव का बचाया बचता है, देव का मारा मरता है, मनुष्य के लिए क्या होता है। मैं स्वयं सामंत का भित्ति सैनिक हूँ, तुम्हारा पुत्र मेरी रक्षा में रहेगा। भित्ति सैनिक की सूरता जानते हो क्या है, मारतों के पीछे भागतों के आगे। बस शांदे की बात न सुनकर एक और मध्यम बोलने लगा, अरे कोई आ रहे, मुझे एक पान का मूल्य दे। मेरे बाबा महाराज पौरव के लिए तलवारें गढ़ता था, मेरा पिता यवनराज मिलिंद के लिए तलवारें गढ़ता था, मैं मद्र के 200 राजाओं के लिए तलवारें गढ़ता हूँ। गढ़े खड़ग से साम्राज्य जीते जाते हैं, मेरे गढ़े खड़ग से राज्य शासन होता है, परंतु मुझे पर्याप्त पान के लिए भी मूल्य नहीं मिलता, कोई शखा मुझे एक पान पात्र दे। अनेक मध्यम किसी की न सुनकर अपनी ही कह रहे थे, जो सबसे ऊंचा बोलता उसी की बात पृथुसेन के कान तक पहुंचती थी। एक प्रौढ़ अपना पान पात्र आकाश की ओर उठाकर बोला, राजपुरुषों ने कल मेरे तीनों अश्व संग्राम के लिए राज्याधिकृत कर लिए। राजसृष्टि पृष्ठ कोष में अनेक अश्वों के लिए 5 स्वर्ण मुद्रा पाता है और मेरे तीनों अश्वों के लिए केवल 4 मुद्रा। गण को संग्राम के लिए मेरे अश्वों की आवश्यकता है। सामंत सरवाट 4-4 कम्बोली अश्वों से जुटे रथों पर मार्ग घेर कर चलते हैं, मेरे अश्वों की गण को आवश्यकता है, सामंत के अश्वों की नहीं। वह अट्टहास में हंस पड़ा। मद्यपान की भिक्षा चाहने वाले खड़गकार ने उसके कान के समीप मुख कर खूब ऊंचे स्वर में परामर्श दिया, मित्र 4 स्वर्ण मुद्रा का मद्य पियो, मित्रों को पिलाओ, सुंदरी वेश्या अलोमा के साथ शयन करो और फिर काषाय चीवर धारण कर भिक्षा पात्र ग्रहण कर, आशीर्वाद देकर उसके मूल्य में पेट भर अन्न ग्रहण करो, संसार माया है, तृष्णा में क्या रखा है, मित्र आओ मित्र पियो। एक युवा मूल्य के लिए खिन्न वृद्धा को सांत्वना दे रहा था, कृपने, आर्य नागरिकों को मद्य के लिए तृषित न करे। आए दिन केनरस के दस्यु तेरे मद के घाटों को चूर कर तेरा मद पीकर तुझ पर ही अत्याचार करेंगे। उसे बाधित कर दूसरा बोला, तू कल का बालक क्या जानता है, केनरस से क्या भय। गण के 200 राजुल्लू से एक राजा का शासन कहीं भला। सागल में पुनः धर्मराज मिलिंद के समय की शांति हो जाएगी। उससे भी ऊंचे स्वर्ग में मार्ग पर लेटा हुआ एक युवक दुहाई दे उठा, मित्रों मुझे पिलाओ, मेरे जीवन की आज अंतिम रात्रि है। सामंत के राजपुरुष आज मुझे धरने आए थे। मेरी चतुरा पत्नी ने कहा कि मेरा पति कार्यवश तंतुवाय के यहाँ गया है, कल आना, कल मैं धरा जाऊंगा। मित्रों मेरे जीवन की अंतिम रात्रि है, मुझे पिलाओ। उसके समीप बैठा व्यक्ति उसकी जांघ पर हाथ मारकर बोला, मूर्ख, वित्तीय सैनिक बनकर प्राण देगा, पलायन कर जा, सैकड़ों बच गए, कठों के गण में पलायन कर जा, वहां सामंतों का राज नहीं, वहां सब मनुष्य समान और स्वतंत्र है, कैसे पलायन कर जाऊं। व्यस्त स्वर में युवक ने उत्तर दिया, मेरी पतिव्रता स्त्री, मेरा सुकुमार बालक, पुरोहित कहता है कि जो स्वामी सामंत की आज्ञा से युक्त है वह परलोक से हीन है, श्वान का जन्म पाकर दंड स्वरूप स्वामी की सेवा करेगा, इस जन्म में दुख पाया परलोक भी बिगाड़ू। तीखे मेरे के स्वाद ओठों पर चाट कर समुदाय में से मायूस बोला, मूर्ख, तूने और तेरे स्वामी ने परलोक देखा है, यह विश्वास ही तेरी दास्ता है। तू अपने पर स्वामी के अधिकार को स्वीकार करता है, यही तेरी दास्ता का बंधन है। तू संकट से पलायन कर रक्षा चाहता है, यही तेरी निर्बलता है। संकट सब स्थान और समय में तेरे साथ रहेगा, संकट का पराभव कर, पराभूत होना ही पाप है, उसका फल तू तत्काल भोगेगा। तू स्वतंत्र करता है, स्वतंत्रता मन अनुभव करना ही जीवन है, पराभूत सजीव होकर भी मृत है, निर्भय हो, जीवन के लिए युद्ध कर, मृत्यु भय का अंत है, जीवन में उत्तेजित हो, कायर मत बन। मानिश ने अपना पान पत्र पुनः होठों से लगा, एक घूट कातर युवक के हाथों में दे दिया। रोते हुए वृत्त का बाहु अपनी ग्रीवा से हटाकर सांदेह ने मारिस को संबोधन किया, किसके लिए युद्ध करें, किसके लिए प्राण दें, सामंत सर्वार्थ के प्रताप के लिए, आचार्य प्रवर्धन के यज्ञ के लिए, मुंडी धर्म रक्षित के लिए, हमारा क्या जाता है, किसका सागल, किसका मद्र, किसे कर्म की भोग से सेवा ही करना, वह सभी की सेवा कर सकता है। मेरे से भीगे होठ चाट कर मारिस ने उत्तर दिया, तुम भी मूर्ख हो, तुम समझते हो सेवा करने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, वही तुम्हारा भाग्य है, दूसरे के स्वार्थ साधन के लिए तुम मनुष्य नहीं बने हो, उस कार्य के लिए पशु है, अपने लिए लड़ो। सामंत और आचार्य अपने लिए लड़ते हैं, तुम अपने लिए लड़ो, अपने अन्न के लिए, अपने वस्त्र के लिए, अपने मेरे के लिए, उस स्त्री के लिए जिसे अंक लेकर सुख पाते हो, उस संतान के लिए जिसमें अपने आप को जीवित पाते हो, मरना तो है ही, अपने मनुष्यत्व अधिकार के लिए लड़ो, जो बिना विरोध के दूसरे के उपयोग में आता है वह जड़ और निर्जीव है, पशु से भी हीन है। तुम सामंतों के राज्य में आधे मनुष्य पूर्ण मनुष्य बनने का यत्न करो, निराशा में शैथिल्य से पशुत्व मत स्वीकार करो, केंद्र बड़बड़ है, उस धन का प्यासा है जो धन तुम्हारे जीवन का आश्रय है, जो मारता है वह सबल है, जो भय करता है निर्बल है। मारिस उठा और एक ओर चल दिया। एक मध्य का ध्यान पृथुसेन की ओर आकर्षित हुआ, मध्यप ने संबोधित किया, तुम शिथिल और मौन क्यों हो सके, तुम भयभीत हो, मारिस कहता है, भय मिथ्या है, किससे त्रस्त हो, युद्ध से भयभीत हो, जाओ किसी द्विजकुलपति के दास बन जाओ, किसी सामंत के दास बन जाओ, राजपुरुष तुम्हारा स्पर्श न कर पाएंगे, अपनी पत्नी से खिंडो, जाओ विश्व अलोमा के समीप जाओ, वह नागदंत की भांति सुचिकंद है, अलोमा लोभी नहीं है, आओ शखा, पान की गोष्ठी में परिचय मित्रता का सूत्र है। अपना झूठा कुल्हर उसने पृथुसेन के मुख से लगा लिया, पृथुसेन पात्र मुख से हटाकर अंधेरे मार्ग पर आगे बढ़ गया। मृत खड़ककार के रोने का शब्द उसे दूर तक सुनाई देता रहा। प्रतीक्षा में खड़े दास ने पृथुसेन को शयन कक्ष का मार्ग दिखाया, वह अन्वेषक अवस्था में पर्यंक पर बैठ गया। दीपशिखा पर मंडराने वाले सलभों की भांति कितनी ही चिंताएं अनेक दिशाओं से आकर उसके मस्तिष्क में घुस जाती, सागल पर बढ़ा आता दुर्घुष शत्रु, इस संकट के कारण छाया आतंक, अभिजात समाज का षड्यंत्र, जन का असंतोष और उपेक्षा, अभिजात समाज की उपेक्षा, इन सब का क्या परिणाम होगा, दिव्या का शिथिल होकर उसके अंक में आत्मसमर्पण, फिर उसका सिहर कर बरस देना, इतना स्नेह और बरस देना क्यों, परंतु क्या वह उनका विवाह संभव होगा, उससे पूर्व केनरस के आक्रमण से क्या हो आएगा, वह सागल छोड़ जाए, मारिस का कहना ठीक ही था, केनरस का अवरोध कौन करेगा, जन की सहायता बिना वह कैसे संभव होगा, वह कोमल उपधानों की उपेक्षा कर हथेली पर थोड़ी टिकाए चिंतामग्न बैठा रहा, उसकी पीठ पीछे खड़ी दासी उसके अजाने में ही व्यजन से मंद वटास कर कक्ष की उष्णा और पावस में उत्पन्न मच्छरों को दूर किए थी। आर्य पृथुसेन ने माथा उठाकर देखा, दासी वापस सम्मुख खड़ी थी। पृथुसेन के मौन प्रश्न के उत्तर में दासी ने निवेदन किया, स्वामी ने आयुष्मान के मंगल के प्रति जिज्ञासा की है, आयुष्मान का स्वास्थ्य ठीक है, चित्त प्रसन्न है, दीर्घ निश्वास लेकर पृथुसेन ने उत्तर दिया, तात से मेरा प्रणाम निवेदन करूं, मैं स्वस्थ हूँ। सैया पर लेट कर उसने कहा, प्रकाश नहीं चाहिए। कक्ष में भिन्न भिन्न स्थानों पर जलते हुए सुगंधित तेल के 5 दीपों में से दासी ने 4 बुझा दी, केवल एक दीप शेष रहा जिसका प्रकाश पर्यंक के नीचे बिछे आस्तरणों पर पड़ रहा था। पृथुसेन को निश्चल देखकर वापी चली गई। विजनधारी दासी आहत किए बिना पृथुसेन की दृष्टि की ओट होकर हवा करने लगी। पृथुसेन करवट लेकर सिर के नीचे बाहू रखकर अनेक प्रकार से लेटा, परंतु निद्रा न आई। एक घड़ी बीत गई, द्वारों और गवाक्षों से कक्ष में झंझावट आने लगा, और फिर वर्षा का शब्द और वायु में जल की शीतलता। स्वयं शीतल वायु आने से वजन धारी दासी वजन एक और रख निश्चल खड़ी रही। कुछ समय पश्चात दासी ने पर्यक के समीप उपस्थित आधार से दुकुल लेकर सेन का शरीर ढक दिया। वर्षा और वायु की शीतलता फिर सेन के विचार विक्षोभ से उत्तप्त मस्तिष्क को शांति दे रही थी। उसके शरीर से दुकुल को हटाकर करवट ले ली। कुछ और क्षण पश्चात उसने दुकुल पुनः शरीर पर खींच लिया। पर्यक ग्रहण करने के पश्चात आर्य को इतने समय तक निद्रा न आती देखकर दासी ने आलिंद में जाकर प्रतिहारी दासी को निद्रोपचार की योग्य दासी प्रस्तुत करने का आदेश दिया। छिले हुए कदली के समान स्निग्ध दौरवर्ण दासी ने निशब्द पदों से कक्ष में प्रवेश किया। उसका वेश और रूप रुचिर था। ग्रीवाशेक मुक्तावली और नवस्फुटित माल्टी कुसुमों की मालाएं गुलाबी कौशे पथ से पीठ पर बंधे सुगोल उरोजों पर झूल रही थी। निरावरण छिनोदर की त्रिवल्ली से कति की ओर उठता हुआ वर्तुल उभार, कति पर पीठ कौशे का एक शातक मुक्तावली की मेखला से संभला हुआ था। उसके कोमल बाहुओं पर मुक्तावली के अंगद और वले थे। उन्मुक्त सुगंधित केश मुक्तावलियों से गूंथे हुए थे। शरीर पर कठोर स्पर्श स्वर्ण आदि धातु नहीं, केवल शीतल सुखद स्पर्श मुक्ता थे। एक और करवट लेने पर प्रसेन की दृष्टि दासी पर पड़ी। दासी उसके चरण सहलाने के लिए झुक रही थी। प्रसेन को करवट लेते देख दासी ने उसकी ओर देखा। दासी के होठों और दीर्घ नेत्रों में दुविधा का भाव था। स्वामी के संतोष के लिए वह मुस्कुराए अथवा संवेदना में गंभीर बनी रही। दासी के उस दुविधा भाव से प्रसेन को उलझन सी अनुभव हुई। उसने दासी की ओर दृष्टि हटा ली। दासी उसके चरण दबाने लगी। उस समय स्पर्श से सुख अनुभव न कर प्रसेन ने पांव खींच लिए। दासी ने अनुमान किया आर्य शीत अनुभव कर रहे। एक और नुकुल आधार से लेकर उसने स्वामी के शरीर पर फैला लिया। शरीर एक नुकुल से ढका रहने के कारण प्रसेन शीत अनुभव न कर रहा था। दूसरा नुकुल शरीर पर आ जाने से उसने दासी की ओर देखा। द्वार से फड़फड़ कर आती शीतल वायु में उसके निरावरण शरीर पर रोम खड़े थे। स्वामी के विनोद के लिए उसका शरीर निरावरण था। सहसा प्रसेन को कल्पना में दिखाई दिया जैसे सामन सर्वार्थ आचार्य प्रवर्धन संतोष के लिए सागल विनाश के कुंड में ढकेला जा रहा है। सागल का अभिजात समाज, सागल का जन समाज, उसके महापति महामती पिता का कठिन प्रयत्न से समृद्ध प्राप्त परिवार, स्वयं वह उसकी दिव्या, वह किसके प्रति उपालंब से निरपेक्ष है। तात का कहना ठीक है, आत्मविनाश में लगे प्रतिस्पर्धियों को हटाने का यही उचित समय है। दिव्या का अनुरोध है, तात धर्मष्ट के समीप जाऊं, महासेनापति का विश्वास प्राप्त करूं। उसने पर्यक पर करवट ली। उसकी दृष्टि पुनः दुविधा और प्रतीक्षा में खड़ी सीट से रोमांचित शरीर दासी की ओर गई। वह संकेत से दासी को विश्राम के लिए जाने का आदेश देकर फिर विश्राम में डूबा करवटी लेने लगा। एक और घड़ी व्यतीत हो जाने पर निंद्रा ने उसे विश्राम दिया। निंद्रा समाप्त होने पर दासी पर्यंक के समीप जल प्रक्षालन पात्र प्रोक्षण वस्त्र के लिए उपस्थित थी। प्रसेन ने द्वार से झांका। आकाश घने मेघों से आच्छादित था। अब भी धीमी वर्षा हो रही थी। सूर्योदय द्वारा विलंब जान पड़ता था। उसने दासी से प्रश्न किया, क्या क्या काल होगा दासी? आर्य, सूर्योदय के पश्चात देर घड़ी। प्रसेन ने कुल्ला कर मुख धो लिया तो दासी ने पोछने के लिए वस्त्र उसकी ओर बढ़ाते हुए निवेदन किया, स्वामी प्रातः से आर्य को दो बार अश्मन कर चुके हैं। आर्य के विलंब से निंद्रागत होने का संवाद पाकर स्वामी आर्य की निंद्रा समाप्त होने की प्रतीक्षा में अंतरंग आस्थान में उपस्थित है। प्रसेन यह संवाद पाकर वस्त्र परिवर्तन कर पिता की सेवा में उपस्थित हुआ। श्रेष्ठी प्रेष्ट गंभीर थे, परंतु उन्होंने पुत्र के प्रणाम का उत्तर मुस्कुरा कर मंगल कामना से दिया। पुत्र के कंधे पर हाथ रख रहस्य से अत्यंत मंद स्वर में वे बोले, पुत्र मद्र की सेना और सागल की स्थिति से तुम परिचित हो। गत संध्या मद्र सेना के केंद्र द्वारा पुनः पराजित होने का समाचार आया है। ये संवाद गणपति से गोप्य रखे जा रहे। मैंने आचार्य प्रवर्धन की शूरसेन और मगध से गुप्त अभिसंधि के काट्य प्रमाण प्रचुर धन व्यय कर प्राप्त किए हैं। पुत्र, यह सब प्रमाण और संवाद लेकर तुम गणपति और धर्मष्ट के समीप जाओ। इस आधार पर तुम उनका विश्वास और आदर प्राप्त करोगे। पुत्र, यह स्वर्ण अवसर और आत्मरक्षा का कर्तव्य भी। कुछ क्षण विचार कर प्रसेन ने उसी प्रकार रहस्यपूर्ण स्वर में परंतु निराशा से उत्तर दिया, तात का कथन सत्य है, परंतु आत्मरक्षा का अवसर प्रायः बीत चुका है। प्रसादों से अष्टित अभिजात समाज के 200-300 परिवार क्या कर पाएंगे, और वे भी तो एकमत नहीं है। मद्र का विशाल जन अत्यंत निरुत्साह और असंतुष्ट है। वे केवल केंद्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गत संध्या अकुलीन और हीन जन समाज के विचार मैंने स्वयं भी सुने हैं। वे क्षुब्ध ट्रस्ट निराश और असंतुष्ट है। तात सेनापतियों के निर्देश का विशेष महत्व तो है, परंतु युद्ध तो जन ही कर सकेगा। जन अत्यंत असंतुष्ट है, निराश है। वे केंद्र का स्वागत करने की प्रतीक्षा में हमारे लिए संभवतः समय रहते सागल को छोड़ दे कर दूसरे देश में शरण ग्रहण करने अथवा अपमान से रक्षा के लिए युद्ध में प्राण देने के अतिरिक्त अन्य मार्ग नहीं। प्रसेन को पहले की भांति स्थिति से निरपेक्ष देखकर श्रेष्ठी उत्साहित हुए। पुत्र को समीप आसन पर बिठा कर समझाया, जन यदि असंतुष्ट है तो संतुष्ट भी हो सकता है। जन का असंतोष और सहयोग आवश्यक है, परंतु यह संतोष और सहयोग सामंत सवार्ट और आचार्य प्रवर्धन की प्रति नहीं, गणपति श्रेष्ठी प्रेष्ट और सेनापति प्रसेन के प्रति होनी चाहिए। समझे, श्रेष्ठी बहुत समय तक पुत्र को नीति का उपदेश देते रहे। मद्रगण के सैन्य को परास्त कर केंद्रस के दस्यु बल तविसा नदी पर पहुंच गए थे। सीमान से आए इन भीषण समाचारों से सागल का नगर समाज अत्यंत त्रस्त और निरुत्साह हो गया। भयभीत जन जब तक आशंका के पुराने कारणों से अभ्यस्त होकर निरपेक्ष होने का यत्न करते, तब तक अधिक त्रासजनक नए समाचार आकर उन्हें व्याकुल कर देते। ऐसी अवस्था में एक अप्रत्याशित घटना ने उन्हें व्यग्र कर दिया। वे विस्मय के आघात से मुंह भाए, घटना के कारण और परिणाम का अनुमान करने लगे। महावृत्त धर्मष्ट देव शर्मा अपने प्रसाद से कराची ही निकलते थे। उसी प्रकार पुत्र शोक से विहल वयोवृद्ध गणपति मिठोद्रस भी परम एकांत सेवी थे। महावृत्त धर्मष्ट सेविका पर आरूढ़ होकर गणपति महासेनापति के प्रसाद में उपस्थित हुए। उसी संध्या गणपति की सेविका भी धर्मष्ट के प्रसाद में पहुंची। महाश्रेष्ठी प्रेष्ठ का पुत्र सागल का सर्वश्रेष्ठ खरगदारी सेन अपने सफल श्वेत अश्व की बागुड़ा दोहरी किए दोनों बार धर्मष्ट और गणपति की सेविका के वक्ष में दिखाई दिया था। महाश्रेष्ठी प्रेष्ठ का रथ दिन में अनेक बार गणपति और धर्मष्ट के प्रसादों के द्वारों पर दिखाई दिया। शामंत ओकृष्ट शामंत मेघवीत इंद्रसेन और महाशाल समर्थक के रथ भी रहस्यमय व्यग्रता से नगर के रथों पर आते जाते दिखाई दिए। 3 दिन तक यह क्रम रहा। अभिजात समारोह साधारण जन का कौतूहल विकलता की सीमा पर पहुंच गया। 3रे दिन संध्या समय गणपति ने आवश्यक विचार के लिए परिषद का विशेष आह्वान किया। दोपहर रात्रि तक जनसमाज परिषद के विचार का परिणाम जानने की प्रतीक्षा करता रहा। परिषद का विचार समाप्त न हुआ। मन में कौतूहल लिए जन उत्कट प्रतीक्षा में ही निद्रागत हो गया। प्रातः सूर्योदय से पूर्व ही नगर के पथ और वीथियां तुमुल भेरी नाद से गूंज उठे। अनेक कात्रिक गृहस्थ निरंतर समापन्न विपत्ति की प्रतीक्षा में रहने के कारण केंद्रस के दलों का नगर में घुस आया जानकर भय से पर्यंक पर सहसा चीत्कार कर उठे। अनेक एक हाथ से शिथिल अंतरवासक संभालते आत्मरक्षा के लिए अपने उपेक्षित शस्त्रों की ओर लपके। अधिकांश स्तंभित होकर आतंक मिश्रित कौतूहल से अलिंदो द्वारों और गवाक्षों से झांकने लगे। बेरी घोष के पश्चात राजकीय तुरीय बजा। अश्वारोहियों ने घोषणा की, श्री मद्र गण परिषद की अनुमति से मद्र गण परिषद के गणपति परम भट्टारक महापराक्रमी महाशामंत महासेनापति मिठोद्रस युद्ध के संक्रमण काल के लिए गण शासन के सर्वाधिकार ग्रहण करते हैं। गण परिषद की आज्ञानुसार मद्रगण के कुलों और उसकी संपूर्ण संपत्ति कुल और व्यक्ति के अधिकार से ऊपर गणराज्य की है। कोई राजपुरुष संग्राम के लिए जन से बलात् बलि ग्रहण न करेगा। कोई नागरिक बलात् सैनिक कार्य के लिए बाधित न होगा। मद्रगण की सीमा के भीतर की कोई संपत्ति स्वर्ण अन्न वस्त्र पशुधन किसी रूप में देश से बाहर भेजने और ले जाने वाला मृत्युदंड का अधिकारी होगा। कुलों की उत्तराधिकार प्राप्त अनुपार्जित आय का अर्धांश विहारों और संघों के निमित्त अर्पित आय का अर्धांश और अग्रहार संपत्ति की पूर्ण आय संग्राम कोष की बलि में अधिकृत होगी। गण के संपूर्ण कुलों और व्यक्ति के संपूर्ण अस्त्र शस्त्र अश्व और रथ संग्राम काल में गण की संपत्ति होंगे। गण सेना में स्वेच्छा से सेवा स्वीकार करने वाले पुरुषों की कृषि भूमि राजस्व से मुक्त होगी। स्वेच्छा से सेवा कार्य करने वाला दास स्त्री और संतान सहित दासत्व से मुक्त होगा। संग्राम क्षेत्र में हताहत सैनिकों के परिवार का पालन गण करेगा। वह भी मध्य गण परिषद की अनुमति से परम भट्टारक महागणपति सेना महासेनापति महाशामंत मिठोद्रस की आज्ञा है। इस आज्ञा का पालन संपूर्ण मध्य प्रजा के लिए धर्म है। घोषणा से अभिजात समाज और जन सभी स्तब्ध रह गए। कुछ ही समय पश्चात कहीं उत्साह से और कहीं क्षोभ से घोषणा पर विचार विमर्श होने लगा। नई व्यवस्था की आशा की उषा में ही जन का विचार और व्यवहार बदलने लगा। दूरदर्शी जन नवीन बलाधिकृतों और नवीन सेनापतियों का नियुक्ति का अनुमान करने लगे। समाप्त।